शान का मूड अब भी उखड़ा हुआ ही था। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया तो आरवी कुछ पल सोचने के बाद पीछे बैठने लगी। तभी उसके कानों में शान की सख्त आवाज पड़ी, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं जो तुम मालकिन की तरह पीछे बैठकर मुझे ऑर्डर दोगी और मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा। उसकी बात सुनकर आरवी के कदम ठिठक गए और वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, तो आप क्या चाहते हैं मैं ड्राइव करूं? देखिए मुझे नहीं आती ये कार चलानी। उसने घबराते हुए उसे देखा। वहीं उसकी बात सुनकर शान ने नजरें घुमाकर उसको घूरने लगा, तुम्हें ड्राइव करने किसी ने कहा भी नहीं है, चुपचाप आगे आकर बैठो। अब जाकर आरवी की जान में जान आई। बेचारी की जान ही निकल गई थी ये सोचकर कि उसे कार ड्राइव करनी पड़ेगी। अब वो मुस्कुराई और आगे आकर बैठ गई। उसकी गोद में अंशु बैठी हुई थी और मुस्कुराई जा रही थी। शान ने कार स्टार्ट कर दी। आरवी ने अपने बगल में बैठे शान को देखा जो बेहद गंभीर लग रहा था, फिर अपने हाथ में पकड़े रोल को देखा। उसने अंशु के कान में कुछ कहा और उसको रोल पकड़ा दिया, तो अंशु ने झट से रोल शान की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, डैडी अंशु आपके लिए परांठे लाई है, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, आपको भूखू लगी होगी, आप ये खा लो। उसकी बात सुनकर शान ने उसकी तरफ नजरें घुमाई और उसके हाथ में पकड़ा रोल देखकर उसकी नजरें आरवी की तरफ घूम गई। खा लीजिए, सुबह भूखे पेट ही चले गए थे, आरवी ने बड़े ही प्यार से उसको खाने को कह दिया। उसने अपनी बात की, इसके साथ ही अंशु की मीठी सी आवाज उनके कानों में पड़ी, डैडी ईट कर लीजिए ना, मम्मा और अंशु इतने प्यार से बोल रहे हैं। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर उससे इंसिस्ट किया तो शान एक बार फिर पिघल गया और उसके हाथ से रोल लेने लगा कि आरवी ने झट से ऊपर से फॉइल पेपर को मोड़ दिया और उसके बाद अंशु ने उसके मुंह की तरफ पराठा बढ़ा दिया तो शान ने बिना कुछ कहे एक बाइट खा ली। वो गाड़ी ड्राइव करता रहा, साथ में अंशु ने उसको पूरा पराठा खिला दिया। अब आरवी ने नजरें दौड़ाते हुए कहा, मैं पानी नहीं लाई, आपकी गाड़ी में पानी है? बैक सीट पर बॉटल रखी होगी, शान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए ही जवाब दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि पीछे से बोतल उठाएगा कौन? आरवी ने सर घुमाकर पीछे देखा, फिर उसे देखकर मुंह लटकाकर बोली, मैं आगे से नहीं निकाल पाऊंगी, गाड़ी रोक दीजिए, मैं पानी ला दूं आपके लिए। शान ने गाड़ी रोकी और एक नज़र उसे देखने के बाद अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे की तरफ मुड़ गया, बोतल उठाई और पानी पीकर डैशबोर्ड पर बॉटल रख दी। गाड़ी एक बार फिर सड़कों पर दौड़ गई। आरवी खामोशी से बाहर देखने लगी। अब वो खुश थी, दोनों के बीच नफरत कुछ कम होने लगी थी। आरवी ने अपना फ़ोन डैशबोर्ड पर रख दिया था। कुछ देर बाद गाड़ी स्कूल के बड़े से गेट को पार करते हुए अंदर चली गई। शान ने पार्किंग में गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। उसने पीछे से वो बैग भी ले लिया जिसमें अंशु के सारे डॉक्यूमेंट थे। आरवी भी अंशु के साथ बाहर निकली। उसने अब भी हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। शान की नज़र उसके फ़ोन पर चली गई जिसे आरवी परेशान सी देख रही थी। उसे यूं हाथ में फ़ोन कैरी करने की आदत नहीं थी तो उसके लिए ये थोड़ा अजीब था। शान ने उसे परेशान देखा तो अपनी हथेली उसके आगे करते हुए बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं रख लेता हूँ, घर जाते वक्त ले लेना। आरवी की तो जैसे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। उसने झट से फ़ोन उसके हाथ में पकड़ा दिया और हल्की मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कह दिया, पर शान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। चुपचाप फ़ोन अपनी पैंट की जेब में रखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया तो आरवी भी अंशु का हाथ थामकर उसके पीछे चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद शान अचानक ही रुक गया तो उसके पीछे आती आरवी उससे टकराते टकराते बची और आँखें बड़ी बड़ी करके पलके झपकाते हुए उसे देखने लगी। शान ने एक नज़र उसको देखा, फिर अंशु का हाथ थामते हुए बोला, साथ चलो, यहाँ सबके लिए तुम मेरी वाइफ और अंशु की मॉम हो, कोई नौकर नहीं जो मेरे पीछे पीछे चल रही हो। वाइफ शब्द सुनकर एक पल को आरवी की नज़रें उस पर ठहर गईं। अगले ही पल उसने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली और लबों पर हल्की मुस्कान सजाए उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। अंशु तो बहुत खुश थी, वो दोनों का हाथ थामे जो चल रही थी। कुछ ही देर में प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए, वो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। शान ने उनसे हाथ मिलाया जबकि आरवी ने हाथ जोड़कर नमस्ते कह दिया। सभी बैठ गए, अंशु अब भी आरवी की गोद में बैठी हुई थी। शान ने आरवी का इंट्रोडक्शन अपनी वाइफ के रूप में ही करवाया था और अंशु के डॉक्यूमेंट भी उन्हें दे दिए जिस पर अंशु के डैड के जगह उसका और मॉम के जगह आरवी का नाम था, पर आरवी इस बात से अनजान थी। प्रिंसिपल सर ने उसके डॉक्यूमेंट देखते हुए कहा, वैसे तो हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आज इतने कामयाब है। आपकी बेटी यहाँ हमारे स्कूल में पढ़े ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, पर एक सवाल था, मुंबई में और भी बड़े बड़े स्कूल हैं, आपके स्टेटस के हिसाब से वो स्कूल आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, फिर आपने हमारे ही स्कूल को क्यों चुना और टर्म के बीच में एडमिशन करवाने का फैसला कैसे ले लिया आपने? मेरी दिली इच्छा थी जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की वहीं मेरी बेटी भी पढ़े, इसीलिए यहाँ आए हैं और टर्म के बीच में एडमिशन इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि एडमिशन के वक्त पर अंशिका की तबीयत खराब थी, अब जाकर पूरी तरह से ठीक हुई है, पहले ही लेट हो गया है, हम और देर नहीं करना चाहते थे, पढ़ाई सही वक्त पर ही शुरू हो जानी चाहिए, मैं नहीं चाहता अंशु बाकी बच्चों से पीछे हो जाए। हाँ, और भले ही अंशिका स्कूल नहीं गई है पर उसकी उम्र के हिसाब से उसे सब आता है, आप टेस्ट ले सकते हैं, आरवी ने शान की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। प्रिंसिपल सर ने खुद ही अंशु का टेस्ट लिया और अचरज से बोले, इन्हें कौन पढ़ाता है? मतलब बिना स्कूल जाए उन्हें अपनी उम्र से ज्यादा आता है। वो अंशु को देखकर हैरान थे क्योंकि वो 6 साल की होने वाली थी और उसे हिंदी और इंग्लिश पढ़नी आती थी। मैथ्स में भी प्लस माइनस सब आता था उसे। उनकी बात सुनकर शान ने आरवी को देखा और आरवी ने उसे और एक साथ ही बोले, यही पढ़ाते पढ़ाती हैं। दोनों ने हैरानी से अब एक दूसरे को देखा। वहीं प्रिंसिपल ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, सही है, बच्चों की जिम्मेदार पेरेंट्स को मिलकर ही उठानी चाहिए। कुछ देर में एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अंशु की ड्रेस और बुक्स वगैरह लेकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल गए। अंशु और आरवी दोनों ही बहुत खुश थे। पार्किंग की तरफ जाते हुए शान की नजर स्पोर्ट ग्राउंड की तरफ चली गई और उसके कदम ठिठक गए। आंखों के सामने एक सीन घूम गया। टू बी कंटिन्यूड।